ओम शांति। 30 नवंबर 2002 अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। मधुबन के भी कुमार हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा ग्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो, ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा कुमारों की विशेषता है कि जहाँ सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्क होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है। अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना, ऐसे कुमार हो। अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो। न विश्व में न अपने संबंध संपर्क में शांति दूत, जैसे आग बुझाने वाले। कहां भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है, बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट इन हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है दिल्ली में करना है ना, दादिया करेगी। इतने कुमार है एक ग्रुप में, इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? बाबा पूछ रहे हैं, एक ग्रुप में इतने हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? किसी ने कहा लगभग 1 लाख। तो करो कमाल कुरा कुमार। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो, लेकिन मन में अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना। 30 नवंबर 2002 कुमारों से मुलाकात। मधुबन के भी कुमार है शांतिवन। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है, अभी कुमारों का टाइटल है। कौन से कुमार हो, ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल कार्य करना, मुश्किल काम करना, हार्ड वर्क होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड से हार्ड वर्क है। अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना। तो कुमारों की विशेषता क्या है? सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत। सबसे ये मुश्किल कार्य है, सबसे हार्ड वर्क है। अशांति को मिटाए, शांति दूत बन, शांति फैलाना, ऐसे कुमार हो। अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ऐसे शांति दूत हो, ना विश्व में ना अपने संबंध संपर्क में। शांति दूत का उदाहरण की तुलना किससे की है बाबा ने? आंख बुझाने वाले, कहां भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, फायर ब्रिगेड। बाबा कहते तुम फायर ब्रिगेड हो, विश्व में दो बहुत सारी आग लगी हुई है, उसमें एक आग तो काम निकार की लगी हुई है जो तुम्हें बुझानी है, दूसरी आज जो कह रहे हैं वो कौन सी आग लगी है, अशांति की आग लगी हुई है, चारों ओर अशांति है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां अशांति नहीं है। संसार में जितने महकमे जितने डिपार्टमेंट्स है सभी में अशांति है कहीं ना कहीं। ऐसा कोई देश नहीं जहां अशांति नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई जगह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हर एक अशांत है। इसके लिए इसकी तुलना किससे की गई है, आग से। चाहे धर्म सत्ता, चाहे विज्ञान सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, तीनों ही सत्ताओं में आग है। सबसे ज्यादा आग कहाँ है तीनों में, राज्य सत्ता में। इतनी सारी पार्टियां, हर पार्टी समझती है कि केवल हम ही शांति दूत है और हमें ही अगर सत्ता मिल जाए तो हम शांति स्थापन कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो कभी नहीं कर पाएंगे, हमें सत्ता मिलनी चाहिए तो हम शांति स्थापन करें। एक पार्टी संपूर्ण विरोध में है दूसरी पार्टी के, संपूर्ण अशांति अशांति। एक देश और दूसरा देश, कितनी अशांति है दो देशों के बीच। धर्म सत्ता, एक धर्म और दूसरा धर्म, दोनों में ही कितनी अशांति है।
टुकड़ा जमीन कर दे दो उनको।
जैन धर्म में कहीं एक सिद्धांत लिखा हुआ है कि यदि एक भयंकर जानवर है, प्राणी एक तरफ से है और दूसरी तरफ मंदिर है, तो यह अच्छा होगा कि आप मंदिर में शरण लो, बट इट इज बेस्ट कि आप मंदिर में शरण ना लो और खुद अपनी जान गवा दो। परंतु मंदिर में शरण नहीं लेना हिंदुओं की, उससे तो सबसे बेस्ट होगा मर जाओ, पर उनके मंदिरों में नहीं जाना। हर धर्म अपने ही सिद्धांतों में इतना पक्का है अंदर अंदर से, यह हर संस्था, कि दूसरी संस्था के विरोध में खड़ा हुआ खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है। तो धर्म में भी इतनी अशांति है, इतनी अशांति है। कल बात कर रहे थे ना शंकराचार्य की, नाराज वो सारी दुनिया की नाराजगी दूर करने वाले हैं, सारे विश्व में शांति स्थापन करने वाले, परंतु उनका अहंकार उनका अभिमान इतना ऊंचा है, शिखर पर है कि थोड़ा भी आहत होता है तो दूसरों को मनाना पड़ता है। धर्म क्षेत्र में अशांति, विज्ञान में भी वैसी ही अशांति। विज्ञान क्षेत्र में ये जो पीस पुरस्कार दिया जाता है ना, नोबेल प्राइज, बाबा मुरलियों में कहते हैं नोबेल प्राइज किसे देना चाहिए, हमें नहीं बाप को। बाबा कहते हैं ना केवल मुझे देना चाहिए पीस प्राइज, ये इन लोगों को दे रहे हैं, पर देना चाहिए किसे, क्योंकि शांति स्थापन करने वाला केवल मैं ही हूँ। दुनिया में लोग पूछते हैं कि शांति कैसे होगी, बाप कहते हैं शांति हो ही नहीं सकती है क्योंकि शांतियां है ही नहीं, शांति केवल शांति धाम में और सुख धाम में, दो ही जगह जहां शांति, यहां शांति है ही नहीं। एक तो ये बात मुरलियों में आती है और दूसरी पीस प्राइज की, पीस प्राइज केवल बाप को देना चाहिए बस। और जिनको ये पीस प्राइज दी जाती है, पांच क्षेत्रों में पीस, जो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबेल ने जो निकाला था 1901, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश का जो व्यक्ति था डायनामाइट की जिसने खोज की थी, पांच क्षेत्र में, एक तो पीस में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पांच क्षेत्र है, उसमें से एक क्षेत्र है पीस। तो ये जो पीस प्राइज है, बाबा कहते हैं ये पीस प्राइज उनको देना ही नहीं चाहिए, केवल बाप को देना चाहिए बस। भारत में भी बहुत कम लोगों को मिला है, दो या तीन ही लोगों को मिला है आज तक, मदर टेरेसा, दलाई लामा, 14वां दलाई लामा, और अभी 2014 में वो बचपन बचाओ आंदोलन वाला, क्या नाम है उसका, कैलाश, नहीं नहीं कैलाश 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 केसे है सामने कुछ, बस ये तीन ही लोगों को आज तक भारत में पीस प्राइज मिला है। 1901 से पहला पीस प्राइज जो रेड क्रॉस वाले हेनरी दुनात को जो दिया था सबसे पहला, तो सत्यार्थी, हाँ कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन, एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये तीन ही लोगों को आज तक भारत में पीस प्राइज दिया गया है। परंतु बाबा कहते हैं कि पीस प्राइज इनको दिया देना ही नहीं चाहिए, केवल एक बाप को ही दिया जा सकता है। किससे कंपेयर किया गया है? हार्ड वर्क। कौन सा हार्ड वर्क है? अशांति में शांति लाना, अशांति के वातावरण में शांति फैलाना, कोई एकदम अशांत है उसे शांत कर देना, उसको शांत करने के लिए हमें कितना शांत होना होगा अंतर्मन से, शांत होने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा अशांति का कारण क्या है। अशांति की तुलना आग से की गई है, बड़ी आग, बहुत बड़ी आग, जैसे कि बड़ी बड़ी आगे जो है संसार में, 1666 की लंदन की आग, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1966 में कितना भयंकर नुकसान हुआ था, एक बेकरी से फैली वो आग और तीन दिन तक जलता रहा लंदन। 1803 की मुंबई की आग, आधा से ज्यादा मुंबई उसमें खत्म हुआ था, 1/3 बचा था केवल। ऐसे से भी ज्यादा आग जो लगी है वो है अशांति की आग, सारे विश्व में आग लगी है। प्रश्न ये है कि ये जो अशांति है क्यों है और क्या करें शांति लाने के लिए, उसके लिए तो सबसे पहले अशांति का कारण ढूंढना पड़ेगा। अशांति के कई सारे कारण हैं, उसमें धार्मिक व्यक्ति भी अशांत है, क्योंकि धार्मिक वह व्यक्ति की चाह है शांति की, वास्तव में यह चाह ही कारण है अशांति का। विरोधाभास है, विरोधाभास क्या है, अशांत क्यों है, क्योंकि चाह है शांति की, वास्तव में चाह ही अशांति है। डिजायर फॉर पीस, इनफैक्ट डिजायर इटसेल्फ इज पीसलेसनेस, ये जो चाह है वो भी, धार्मिक व्यक्ति भी अशांत है, क्योंकि वो क्या चाहता है, शांति चाहता है, परंतु चाह ही अशांति है। तो मार्ग क्या है, व्यक्ति प्रार्थना करते हैं भगवान से, भक्ति में भी करते हैं, यहां शायद ज्ञान में भी करते हो कि बाबा शांति दे दो, या भक्ति में तो करते ही है कि शांति दो शांति दो, द्वापर युग से चिल्लाते आ रहे, सदा की पुकार, तन से खाली, धन से खाली, मन से खाली, मन से खाली अर्थात सदा की पुकार, जब ऐसे सुधा में मिसल तुम हो गए थे तब बाप आते हैं, धन से खाली काला धन, मन से खाली सदा की पुकार, तन से खाली शिव की बरात, जब ऐसी तुम्हारी अवस्था हो गई थी तब बाप आते हैं। अब ये जो पुकार है सदा की पुकार, किसकी पुकार है, द्वापर से चिल्लाते आ रहे, शांति दो शांति दो शांति दो शांति दो शांति दो, पुकार रहे ना, मतलब शांति नहीं है फिर पुकार रहे, परंतु क्या ये पुकार उस तक पहुंच रही है इस तरह की, वास्तव में शांत हो जाना है तो उससे कनेक्शन जुड़ता है, उससे शांति मांगनी नहीं है, उसका कनेक्शन भी उसके साथ तब जुड़ता है जब हम शांत हो जाते हैं, जब ये असंबंध हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तब और ज्यादा अशांत होते हैं। वास्तव में स्वस्वरूप में स्थित हो जाना अशांति से मुक्त होना है, और हम आत्माओं ने क्या किया है, अशांति से मुक्त होने के लिए शांति मांगी है, जब हम शांत स्वरूप में स्थित होते तभी उस तक पहुंचते हैं, शांति हमारी पात्रता है, कोई चीज नहीं है कि जो हमें कोई दूसरा व्यक्ति दे। कोई व्यक्ति हमें शांत नहीं कर सकता, कोई चीज हमें शांत नहीं कर सकती है, परमात्मा भी नहीं कर सकता है। वास्तव में हम जब शांत होते हैं तो उससे जुड़ते हैं। पहला प्रिंसिपल ही है, पहला सिद्धांत है कि स्वयं पहले शांत हो जाओ, फिर उससे जो मिलेगा वो आनंद की वर्षा है, फिर उससे सब मिलेगा। इसके वैसे ही, क्योंकि वो शांति का सागर है, हम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होना है। व्यक्ति एक्चुअली जो भी प्रार्थना कर रहा है वो उस तक पहुंच ही नहीं रही है। एक रीति से हम जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उससे कनेक्शन जुड़ता है। हम एक तरफ है, हम शांति अशांत है और शांति मांग रहे हैं, चाहे व्यक्ति से मांग रहे हैं, चाहे परमात्मा से मांग रहे, गुरुओं से मांग रहे हैं, चाहे किसी और से, परंतु कोई हमें शांत नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो माध्यम है उस तक पहुंचने का वही गलत है, वो जो प्रार्थना ही गलत है। उदाहरण बताते हैं कि जैसे किसी का घर है, उसमें कॉल बेल है, ठीक है, वो कॉल बेल जो है वो बिगड़ गई है, तो व्यक्ति ने फोन किया कि हमारे घर की कॉल बेल बिगड़ गई है। वो मैकेनिक आता है, ठीक है, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, आया ही नहीं, मतलब अंदर तो पहुंचा ही नहीं, आकर चला गया। तो ये व्यक्ति फोन करता है कि हमारे घर की कॉल बेल खराब है, हमने आपको फोन किया था, आप आए क्यों नहीं। वो कहता है मैं 3 बार आके गया, बेल बजाई पर अंदर से किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो मैं चला गया। वो कहता है मैं आया था पर अंदर से किसी ने खोला ही नहीं दरवाजा, इसके लिए मैं चला गया। दोष किसका है? अंदर वाले व्यक्ति का कि उसने दरवाजा नहीं खोला? दरवाजा है, साधन ही गलत है। ये कठिन उदाहरण है थोड़ा, पर गहराई से समझने जैसा है। वो जो चाह है, वो जो मांगना है, वो जो प्रार्थना है, वास्तव में वो प्रार्थना ही गलत है, वहीं पर बिगाड़ है, उसी को हम कर रहे हैं, पर उस तक पहुंच ही नहीं रहा है कुछ। पहले तो उसको ठीक करो, तो वो घंटी अंदर जाएगी और दरवाजा खुलेगा। पहले खुद ही शांत हो जाओ। कोई व्यक्ति हमें शांत नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति के पास हमारी किसी समस्या का हल नहीं है, यहां तक कि परमात्मा के पास भी नहीं। यदि वो दे भी तो हम करेंगे भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेंगे। वास्तव में हमें डर है, उस हल से भी डर है, हम नहीं चाहते। सारी समस्याओं का हल स्वयं में है, सारे प्रश्नों का उत्तर यहां है। सारी शांत होने की विधि है, अशांति के कारण को पहले ढूंढो। हो सकता है कोई चाह है, कोई एक्सपेक्टेशन है, वही अशांति का कारण है। सभी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना, स्वयं शांत हो जाओगे। किसी भी मनुष्य से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना इस संसार के, स्वतः ही शांत हो जाओगे। संडे की मुरली, बाप ऑलराउंडर है, हर प्रकार से पार्ट बजाता है। बाप भी बनता है तो सखा भी बनता है। बाप हमारा भाई भी है तो बाप हमारी बहन भी है। ये संबंध उससे जोड़ा है पूर्णिमा बहन, भाई का और बहन का। आज रक्षाबंधन है ना। बाप ही हमारा भाई है, किसी को भी भाई बनाने की आवश्यकता नहीं है इस संसार में, किसी को भी भाई नहीं बनाना, इस यज्ञ में भी किसी को भी भाई नहीं बनाना। भाई है ही, पर वो मैं इसके लिए कह रहा हूं किसी को भी भाई बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर भाई बनाया तो उससे एक्सपेक्टेशन, उसको राखी बांधी तो उसने भी हमें कुछ देना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेशन चालू हो जाती है। भाई अगर जैसे ही किसी को भी बनाता है, किसी भी व्यक्ति को भाई नहीं बनाना अपना। भाई बनाना है ना, एक शिव बाबा ही भाई है बस, वो एक ही भाई है और कोई भाई नहीं है। बड़ा भाई, छोटा भाई भी, पहले भाई की चर्चा, तो छोटा भाई भी है तो बड़ा भाई भी है, एक ही भाई है। इसके लिए सारी बहनें ब्रह्मा कुमारी ये बात अच्छे से सुन लो, भाई एक ही है। जाने दो, परंतु अंदर में ये गांठ पक्की कर लो कि भाई एक और एक ही है। किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य को, जैसे ही भाई बनाया, एक्सपेक्टेशन चालू हो जाती है कि वो हमारी रक्षा करे, वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट दे, वो हमारे लिए कुछ करे। हम यदि कहीं जाए तो ट्रांसपोर्ट दे, हमें ट्रांसपोर्ट की चाह होती है ना बहनों को, सेवार्थ ऑफ कोर्स। सब कुछ सेवार्थ ही है यहाँ पर, परंतु वो भी चाहना हो, कोई कोई सेवा दे, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कोई कुछ दे, किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब संपूर्ण चाह से मुक्त हो जाओगे तो सब कुछ चरणों में आकर गिरेगा। प्रेम की भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की चाह, प्रेम मांगना बंद, प्रेम की चाह बंद, प्रेम की अपेक्षा बंद, तो प्रेम चरणों में आके गिरेगा। जो चीज मांग रहे हो उस चाह से मुक्त हो जाओ तो वो पीछे पीछे आएगी। सूक्ष्म सिद्धांत है, पैसे चाहिए ना, बहुत पैसे चाहिए, पैसे की चाह से मुक्त हो जाओ तो पैसा चरणों में आकर गिरेगा।
तो अंदर से फिर बनी रहेगी, आएगा।
सारी चाह से मुक्त सभी बहने, किसी भी भाई से कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी सुविधा, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुरक्षा, कोई भी सिक्योरिटी, पैसे, ट्रांसपोर्ट से कोई भी, कुछ भी, साथ साथ हमारे साथ रहे, ये भी चाहनी। कोई नहीं है, एकला चल रहे, बस
बिंदु तो खिलखिलाता है।
कोई चाहनी। सूफी संत हुई है राबिया, दिखाया उसके जीवन में, एक बार किसी गांव में गई, देर हो गई थी, रात हो गई थी, रहने को उसको कोई घर नहीं था, हर घर पर ठक ठक आया, किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया, सभी ने कहा है कि तुम हमारे सांप्रदाय की नहीं हो, तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करती हो, ये क्या तुमने नया चालू किया है। सूफी सांप्रदाय थोड़ा सा अलग है इस्लाम से, थोड़ा सा हटके है, उसमें जैसे हिंदुत्व समाया हुआ है, उसमें भगवान को, ईश्वर को प्रेमी के रूप में पूजा जा रहा है, उसकी आराधना की जा रही है। भगवान जैसे कोई व्यक्ति है जो इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम वो अल्लाह, वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं, इससे हटकर है वो। राबिया आधी रात पहुंची, हर गांव गांव में जितने दरवाजे उसने ठक ठक आए, सब ने कहा नहीं आना यहाँ, किसी ने रहने को घर में स्थान नहीं दिया। एक अकेली स्त्री, एक नारी आधी रात में अकेली किसी गांव में, सारे दरवाजे बंद, कहां जाएगी, अकेली निकल गई बाहर। गांव के बाहर थोड़ा जंगल था, जंगल में हरियाली थी, एक जगह बगीचे सा था, और वहां जाकर बैठ गई आधी रात, और देखा आधी रात को अप्रतिम सौंदर्य प्रकृति का। पूर्णिमा की रात, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर, संपूर्ण चंद्रमा आकाश में तारे, और एकदम से जैसे गीत बजता है उसके हृदय से कि ऐसा अप्रतिम सौंदर्य, धन्य भाग, धन्य धन्यवाद उन गांव वालों को कि अगर आज उन गांव वालों ने मुझे स्थान दिया होता, जगह दे दी थी अपने घर में, तो ये सौंदर्य मैं देख नहीं पाती। हे प्रभु, तेरा तो बहुत ज्यादा धन्यवाद, और तेरे से ज्यादा धन्यवाद उन गांव वालों का। और दिखाया है कि जाकर वापस खटखटाती है कि धन्यवाद आप सबका, एक एक घर में जाकर कि तुम्हारी वजह से ये रात मुझे देखने को मिली। स्त्री है, परंतु उसने कभी चाह नहीं की कि कोई मुझे मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, कोई चाह नहीं, कोई किसी पर थोड़ा भी अवलंबन नहीं। यहां तक कि उसके साथ का जो उसका साथी था, वो भी सूफी फकीर ही था, हसन, उसमें भी एक दिन बताया गया है कि इच्छा उत्पन्न होती है और उसको राबिया से कहता है कि हम दोनों शादी कर ले। यहां तक कि हसन भी बहुत बड़ा सूफी संत है, परंतु उसको देखकर उसके भी मन में ये चाह उत्पन्न होती है एक बार, हसन के मन में भी, कि हम दोनों शादी कर ले। परंतु राबिया का जो स्टांस, उसने उसकी जो लगन थी एक से बस, कोई नहीं चाहिए, ये भी नहीं कि हम दोनों मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, उनके रीति से उनका जो पुरुषार्थ है, यहां तक कि हसन बहुत ऊंचा संत है और वो विवाह भी पवित्र ही विवाह होता, दोनों मिलकर करते, क्योंकि लोगों का विरोध बहुत था, वो तो शुभ भावना से कहता, परंतु ना, राबिया का जो दिखाया है, सूफियों में सर्वोत्कृष्ट संत राबिया है, स्त्रियों में नो कॉम्प्रोमाइज, केवल एक से लगन, केवल एक से प्यार, बस अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, तो कोई भी भाई को भाई नहीं बनाना, भाई ही रहने देना, भाई नहीं बनाना, भाई को भाई रहने दो,
भाई जी तो
भाई जी कर रहने दो, बस भाई नहीं बनाना, भाई जी ये टर्म जो है ना, बड़ा ही सुरक्षा है इस टर्म में, जो बहने भाइयों को भाई जी कहती है वो पवित्रता में बहुत दृढ़ रहती है और बहुत सुरक्षित रहती है, क्योंकि भाई जी शब्द जो है ना उसमें विकार बहुत दूर दूर तक आ नहीं सकता उस शब्द में, चाहे छोटा भी व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, भाई जी अगर कह दिया तो बस एक दीवार सी है।
मर गए भाई, पुराने संस्कार से मर गए भाई।
वही पर, तो एक तो ये, अभी दूसरा ये उससे ज्यादा है खतरनाक, किसी को भी बहन एक ही है, कौन बहन है, बस एक ही, शिव बहन, शिव बहन जी जो है शिव बहन, शिव बहन जी एक ही बहन है, तो कमलेश भाई बिंदु बहन एक बिंदु बहन के अलावा किसी को भी किसी से भी राखी नहीं बनवाना, बहन एक ही है बस उसी से ही राखी बनवाना है, अगर ये सोचा कि मुझे बहन नहीं है तो चाह उत्पन्न होगी, ये बहन मुझे राखी बांधे, वो बहन मुझे राखी बांधे, जिनको लौकिक बहन नहीं होती ना उनको ये इच्छा और ज्यादा होती है, या फिर कभी कभी तो लोग ज्ञान में भी इसी वजह से आए हैं कि उनको लौकिक में बहन नहीं थी और पहली बार किसी ब्रह्मा कुमारी ने राखी बांध दी और आंखों से आंसू आ गए और तब से पक्के हो गए ज्ञान में, ऐसे भी है, शायद तीसरी भी कैटेगरी होगी कि जिनको कोई बहन नहीं थी और कोई इच्छा भी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी माँ ही उनके लिए बहन थी, उनकी माँ ही उनके लिए बहन थी, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इस यज्ञ में हमारे शांतिवन के संजय भाई जो है किचन के, तीन भाई एक भी बहन नहीं, और बहुत विरोध, पिता ने छोड़ दिया माँ को, सौतेली माँ, परंतु उनकी माँ ने ही उनको सब कुछ, उनकी पालना की, खुद नौकरी की, सब कुछ किया, इतना त्याग है, इतना त्याग है उस माँ में, पता है ना संजय भाई, शांतिवन, तीनों भाई, एक भाई तो यहाँ है, दो भाई उधर है गांव में, तो वो शांतिवन, तो उनकी जो माँ है उन्होंने त्यागपूर्ण जीवन है, अभी भी तो आए थे नीचे, उनका सत्कार हुआ था बहुत बड़ा, तो किसी को भी बात चल रही है बहन, उसमें भी जैसा भाई जी शब्द है वैसा बहन जी जो शब्द है वो बहुत ही सुरक्षा का कवच है, एक तो है हम कहते हैं बहन ये बहन वो बहन, पर उसमें बहन जी अगर जोड़ दिया जाए तो वो
अच्छा
बहुत बड़ी सुरक्षा है, चाहे छोटी भी क्यों ना हो, चाहे बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि वो बहन के संबंध में भी बाबा कहते हैं ना क्या होता है, उसमें भी वृत्ति चलायमान होती है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे अपेक्षाएं उत्पन्न होती है, ये हमें कुछ दे, ये हमें राखी बांधे, फिर टोली दे, फिर और कुछ करे, कोई तो विशेष करे, ये सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, कि इसके लिए किसी भी बहन को बहन ही रहने दो, बहन नहीं बनाना, बहन को बहन ही रहने दो, बनाना है तो बहन जी और सभी बहनें कोई एक नहीं, सभी के प्रति समान समदर्शी एक ही दृष्टि, कोई भी विशेष नहीं, सभी बहनें हैं और बहनें ही रहने दो, बहन जी ही रहने दो, उसी में सुरक्षा है इस जीवन की, तो सबसे बड़ा भाई कौन, शिव बाबा, सबसे छोटा भाई कौन? शिव बाबा। सबसे बड़ी बहन कौन? शिव बाबा, बिंदु बहन। और सबसे छोटी बहन कौन? शिव बाबा। छोटी बहन भी वही, बड़ी बहन भी वही, ये संबंध आज उससे जोड़ देना। हम कहाँ थे? अशांति पर। हम थे चाह पर। अशांति का सबसे पहला कारण था चाह, इच्छा, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। यहां तक कि शिव बाबा से भी एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना तो धोखा होगा। कि वो हमें ये करे, ऐसा ऐसा करे, हम ऐसा ऐसा करे तो, वो अगर ऐसा ऐसा करे तो हम करेंगे। क्यों? निश्चय है उससे इस तरह की अपेक्ष। हम यहां आएंगे जैसे एक भाई कहता था, हाँ मैं समर्पित होता हूं, परंतु लेकिन उसमें लेकिन था, ये होना चाहिए, उसमें भी शर्तें थी ये सारी, ये अगर हो गया तो ठीक। सुरक्षा, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। हम इस यज्ञ में आने को तैयार है, ज्ञान में चलने को तैयार है, पर सुरक्षा की गारंटी है तो उसकी तरफ से वो आना वो अलग बात है। हम वो सोचे, वो वास्तव में समर्पण है ही नहीं। हम ये सोच के अगर कहे, कोई भी चाह से हम अगर कर रहे कि इसमें शर्त कैसी, तुम ये करो तो हम ये करेंगे, ये इसे प्यार नहीं कहा जाता है। मैं तुम्हें जैसे तुम हो वैसे स्वीकार करता हूं, ये भी एक चाह है क्या? ये प्रेम है? प्रेम इज अनकंडीशनल। जहां तुम रखो, जो तुम खिलाओ, जैसे तुम बिठाओ, बहुत ऊंची अवस्था है समर्पण, बहुत ऊंची अवस्था। जो राजी तेरी रजा में, जैसा वो रखे। गीत सुना देना इनको। जैसे तेरी इच्छा, जो तू चाहे, ढाईवेल शाल बिटन, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, जो जहाँ तू रखना चाहे वहाँ हम रखेंगे, जहाँ तू रखना चाहे, जो तू खिलाएगा उसी में संतुष्ट। कोई चाह ही नहीं है कि ये नहीं वो चाहिए था, वो नहीं ये चाहिए था। जहाँ तू रखे, जो तू कराए, जो तुझे पसंद वो हमें पसंद। ये बहुत 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 ऊंची अवस्था है। वास्तव में कर्मातीत अवस्था ये है सर्वोच्च। इसके लिए यहां तक पहुंचना है। ये जर्नी है समर्पण की, ये जर्नी है समर्पित होने की। समर्पण किसी भी समारोह का, उत्सव का नाम नहीं, मन की अवस्था है। वहां तक पहुंच, इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट वन डे जॉब और बिजनेस। इट इज अ जर्नी। जर्नी अर्थात उस समर्पण को बढ़ाते जाना है, अंदर ही अंदर मानसिक समर्पण, संकल्पों का समर्पण। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें संपूर्ण स्वीकृति का भाव, संपूर्ण स्वीकृति, वो समर्पण है। जैसे एक बार यही सुनाया था इसी क्लास में बहुत पहले, भामती विद्यावाचस्पति, बहुत पहले दसवीं या नौवीं या दसवीं शताब्दी में, जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक यहाँ इस भूमि पर हुआ है, विद्यावाचस्पति। इतना वैराग था उसमें, इतना वैराग था, ईश्वर को पाने की चाह से भरा हुआ था। फिर भी पिताजी ने पूछा, ऐसी उसकी वैराग अवस्था में शादी करोगे? उसको सुनाई भी नहीं दिया ठीक से, उसने हाँ कर दिया। फिर शादी भी होने लगी, शादी भी होने लगी तो भी अपनी वैराग अवस्था में था, उसको पता ही नहीं उसकी शादी हो गई। शादी हुई, उसको पता ही नहीं, घर में पत्नी भी आ गई। और 12 साल तक उसका जो लक्ष्य था, वो एक उसको टीका लिखनी थी ब्रह्म सूत्र पर, वो अपना लिखता रहा, बस ईश्वरीय अवस्था में मगन था, प्रेम में, और वो टीका लिखते रहा। उसको पता ही नहीं कि 12 साल कोई एक स्त्री भी थी, और वो जो स्त्री थी चुपचाप उसके लिए भोजन बनाती थी, भोजन रखती थी थाली, वो खा लेता था, थाली होने के बाद में उठा लेती थी। उसको पता ही नहीं कहां से भोजन आ रहा है। उसकी ऐसी एक मगन अवस्था थी कि 12 साल तक उसका चला। अब अंतिम, और उसने ये सोचा था जैसे ही मेरा ये शास्त्र पूरा हो जाएगा, लिखना ये टीका ब्रह्मसूत्र पर, शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र पर, मैं संन्यास ले लूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंतिम रात्र थी, 12 बजने को थे, उसने भोजन किया और थाली रख दी, लाइट चली गई, तो किसी ने दिया जलाया, उसको पहली बार दिखा कि कोई कंगन या हाथ, तो उसने बोला ये हाथ किसका है इतनी रात में, ये तो कोई स्त्री का लग रहा है। तो उसने बोला तुम कौन हो, हे स्त्री तुम कौन हो? कहता मैं आपकी पत्नी हूं, 12 साल पहले आप मुझे यहाँ ले आए थे। उदाहरण ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, विद्यावाचस्पति का, वो कहती मैं आपकी पत्नी हूं, तो आप ही मुझे लेके आए थे। तो कहते अच्छा मैं लाया था, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहा आपने कभी पूछा नहीं। मैं खुश थी, परंतु वो कहता है, वो रोने लगता है, आंसू आते हैं उसको, अरे मैंने कितना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ कर दिया, आज तो अंतिम रात्रि है, मेरा ये शास्त्र पूरा हो गया, सुबह उठते ही मैं जाकर संन्यास लेने वाला हूं अब तो। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे स्वीकार है, आपने इतना मेरे से बात कर लिया ना, बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है, मेरा ये विवाह सफल हुआ, आप जा सकते हो, मैं आपको जाने की अनुमति देती हूं। और वो जाता है और संन्यास ले लेता है। सबसे बड़ी बात है, उसका नाम होता है भामती, भामती उसकी पत्नी का नाम। वो जो शास्त्र लिखता है, अपने शास्त्र का नाम रखता है भामती, अपनी पत्नी की याद में। आज लोग विद्यावाचस्पति को भूल गए, भामती याद है, भामती सब स्कूल ऑफ वेदांत, भामती सब स्कूल ऑफ अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत का एक सब स्कूल है वो थॉट, उसको लोग याद रखें। ये है समर्पण, कोई चाह ही नहीं है, निश्चाह, इच्छा मात्रम अविद्या, इतनी ऊंचा उसका समर्पण भाव है। समर्पण यह है जिसमें हमारा कुछ भी नहीं है, तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में। हमारे पास है क्या? ये घर कब उसकी बिजलियां गिरेगी और जला देगी? तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना, इसके लिए राजी तेरी रजा में। तो इच्छाओं का अशांति का कारण है चाह। असमर्पण का भाव, असमर्पण का भाव, संपूर्ण समर्पण हुआ नहीं। संपूर्ण समर्पण हो जाना अर्थात ही संपूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाना। जैसे ही एक्सपेक्टेशंस गिर जाती है, इच्छाएं गिर जाती है, किसी से भी नहीं, व्यक्ति से भी नहीं, यज्ञ से भी नहीं, ये यज्ञ भी हमारी रक्षा करेगा, हमारी सेवा करेगा, हम बीमार पड़ेंगे तो कोई मिलेगा, कोई हमारी सेवा करेगा, कुछ नहीं। दादियों ने कभी ऐसी इच्छाएं की थी? कभी नहीं। जब कूद पड़े इस यज्ञ में, इस आग में, कोई सोचा था कि हम बूढ़े होने के बाद हमारी कोई रक्षा करेगा? कुछ नहीं सोचा, कूद गए बस, जो होगा तो देख लेंगे। जब ऐसा भाव होता है तब ऊपर से मदद आती है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता में वचन है, ऐसा जो भक्त है, मन मना भाव मध्याजि भक्ता माम नमस्कुरु, मुझ पर संपूर्ण जो अर्पित है, ऐसी जो अर्पिता है, समर्पिता है और निवेदिताए है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। संपूर्ण रक्षा ऊपर से होती है उनकी, बिना उनके कुछ कहे, और उनकी ही होती है। बाकी ओके तो मन में कंप्लेंट, दुख रह जाता है। तो हम सब कौन है? शांति दूत। संसार में आग लगी है अशांति की, हमें शांति स्थापन करनी है, शांति फिर से लाना है। शांति जैसी प्रिय वस्तु, शांति जैसी शक्तिशाली वस्तु, शांति जैसी प्यारी चीज, अगले संडे की मुरली, इस संसार में और कोई नहीं है। शांति जैसी प्रिय वस्तु, शांति जैसी प्यारी चीज, शांति जैसी शक्तिशाली वस्तु, इस संसार में और कोई नहीं है। तो हमें इस संसार को शांति देनी है, उसके लिए स्वयं को शांति से भरना पड़ेगा, इतना शांति से भरना पड़ेगा कि स्वतः ही ये प्रकंपन जाएंगे और आत्माओं को शांत करेंगे। भाषण से आत्माएं शांत नहीं होने वाली, शांति पर भाषण देने से कोई शांत नहीं होने वाला। स्वयं ही ये पुरुषार्थ है आप सबका, हमारा, सभी यज्ञवत्सों का, सभी ब्रह्मावत्सों का। ये पुरुषार्थ है स्वयं को शांत करना।